नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
विहाय या सागर वारिवाससं वधूम वेवां वसुधा वधूम सतिं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रभव्राज सहिष्णुरच्युत। आदि ब्रह्मा आदिम कीर्तंकर आदिनाथ भगवान की यह बात है, जिन्हें सागर तक फैली हुई लंबी चौड़ी धरती मिली थी उसके वे पालक थे। आदिम कुलकर के रूप में, अंतिम कुलकर के रूप में वे माने जाते थे और संसार जो पीड़ित था उसके लिए उन्हें किस प्रकार जीवन चलाना ये बता दिया। इसके उपरांत इस सारी धरती को, अपनी पत्नियों को, अपने राजकीय वैभव को सबको छोड़ दिया और मुमुक्षु बन करके, एकाकी बन करके, अकेला हो करके वन का सहारा ले लिया। पुत्र थे भरत, चक्रवर्ती आगे बनने वाले, उन्हें भी राज दिया। फिर इसके उपरांत बाहुबली ओदनपुर का राज दिया और कई लोगों को जो कुछ देना था वह सब कुछ दे करके चले गए। जब संन्यास्त हो गए, प्रव्रजा को अंगीकार कर ली और तीर्थंकरों का यह नियम होता है, जब तक कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती तब तक किसी से वो बोलते नहीं और जब बोलते भी हैं तो केवल धार्मिक चर्चा करते हैं। मौन साधना के साथ उनका काल व्यतीत होने लगा और 6 माह के लिए वे आहार का भी त्याग करके अपनी चर्या को अपनाते हुए रहने लगे। कुछ दिन के उपरांत उनके पास 2 बच्चे चले जाते हैं, उनका नाम नमी विनमी ऐसा ही कुछ हो सकता है, और जा करके वो प्रार्थना करने लगे, हे पितामह, हमें आपने क्या दिया, हम तो रह गए हैं। एक बार कहा कुछ भी ध्वनि नहीं निकली, 2 बार कहा कुछ भी उत्तर नहीं मिला, 3री बार में कहा समझ में आता है ये अपने ध्यान में होंगे, और एकदम पूछना ठीक भी नहीं है, और वो बैठ गए वहाँ पर और दृढ़ संकल्पित हुए, हे भगवान, जब तक आप हमें कुछ नहीं कहेंगे तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं, जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हम कोई कुछ भी दे दे हम उसको नहीं लेंगे, हमें क्या दिया, बस भले ही 5 सुपारी हमें दे दे कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपसे ही लेना है। बैठ गए, अब वो भी बैठ गए, उनका दृढ़ संकल्प है हम किसी से बोलेंगे नहीं और बोलेंगे तो धार्मिक कथा के अलावा कुछ नहीं है, तिल तुस मात्र भी पास नहीं रखा है। परिव्रजा जिसको बोलते हैं परिव्राट, केवल मुक्ति के मार्ग पर गमन कर रहे हैं, व्रज धातु गति के लिए होती, केवल मुक्ति की ओर जाने की बात वो कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं, मौन भंग नहीं हुआ, दृष्टि उठ करके देखे नहीं, और कुछ साइन पुद्गलानुक्षेपक या बोलते हैं ना आप लोग, न शब्दों के माध्यम से, न कोई कंकर पत्थर इत्यादि के माध्यम से, कुछ भी सांकेतिक भाषा कुछ भी नहीं, तो क्या लेने वाले भी ऐसे दृढ़ संकल्पित है, वो भी क्या कम है। देवों का सिंहासन हिल गया, महादेव जो बैठे हैं वृषभनाथ वो तो हिले नहीं, लेकिन प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है, तपस्या तो तपस्या है, त्याग तो त्याग है, ये देंगे नहीं, और वो कहते हैं जब तक मिलेगा नहीं और इन्हीं के माध्यम से होना चाहिए। तब जो है एक देव आकर के कहता है, आप देर से आ गए, क्या हुआ, आप कौन आ गए यहाँ पर, हमारे से बाद में आ गए आप तो, नहीं मैं यहीं पर बैठा था जब महाराज जी मुझे, महाराज जी ने कुछ कहा है उसको सुनिए, महाराज जी अब बोलेंगे नहीं, वो संन्यास्त हो गए हैं और संन्यास्त होने से पहले ये कहा था, देखो 2 बच्चे आएंगे और उनके लिए ये बात कह देना अब मैं मौन धारण कर लेता हूँ, ऐसा मैं इसी काम के लिए नियुक्त हो गया हूँ और भगवान की आज्ञा है और भगवान की आज्ञा नहीं मान सकते हो, हमें भरोसा नहीं आप। नहीं भरोसे कैसे नहीं है कि ये तो कह रहा हूँ और किसी के लिए नहीं और आपके लिए है, दोनों के लिए राज दिया गया है विजयार्थ की श्रेणी में। देखो झूठ तो नहीं बोलोगे? नहीं, भगवान तो यहीं पर सामने बैठे, जैसे आप लोग कह देते ना चौके मारने के उपरांत, हम इतने से तो आए हम कहां बाहर से आए, इतने से तो है। इसी प्रकार उस देव ने भी जमा दिया, काम जम गया और वो श्रेणी विजयार्थ की श्रेणी में पहुंच गए। देव ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो भगवान के ऊपर उपसर्ग हो जाता। मान लीजिए इसी प्रकार मौन यदि हम धारण करके बैठ जाते हैं, अपने मन में कितने प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, ये हम लोगों के दिल की कमजोरी है। कोई भी आ जाए तो इनको कष्ट न पहुंच जाए, हमारे नहीं बोलने से, हमारे मौन धारण करने से ये उल्टा कोई समझ ले तो और गड़बड़ हो जाएगा। और हम एक समझाने का प्रयास करते हैं, देखो बोल नहीं बोलने का हमने तो नियम लिया था लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए हम बोल रहे हैं, या कुछ संकेत कर देंगे। यही तो उसकी साधना का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवधान होने के उपरांत भी वह किसी भी प्रकार से मन में बोलने का भाव नहीं करता है, इसी का नाम आकिंचन है। मेरा यहां पर कुछ भी नहीं और मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, इस प्रकार का जब संकल्प लिया जाता है उस समय का जो आनंद का अनुभव होता है उससे बढ़कर के कोई आनंद का अनुभव नहीं। पहली बोली में ठंडी रही, दूसरी बोली में ऐसी गर्मी चढ़ने लगी तो बोलियां बढ़ती बढ़ती चली गई। इसी प्रकार जब एकाद आकिंचन हो जाता है तो देख देख करके खूब आकिंचन होना चाहिए। आज तो आकिंचन है, अकेला होना है, लोनलीनेस, मैं अकेला हूं। सोचिए इसमें जो बल है सबके साथ नहीं है, सब अकेले हैं, आप अकेला अवतरे, और इसी को श्लेष बना दीजिए, आप अकेला अब तरे। हाँ, ये खरी बात है, आप अकेला अवतरे, अकेले ही उत्पन्न हुए हैं, अब अकेले ही जाना है और तरना भी अकेला है। यह संसारी प्राणी को अप्रिय सा लगता है। एक व्यक्ति ने अपने भविष्य के बारे में ज्योतिषाचार्य के पास गए और कहा कि बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा क्या बताएं, आपके सामने सामने ही आपके परिवार के जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे। अब क्या हुआ? वो कहता है ये क्या कह रहे हो आप, ठीक नहीं कह रहे हो। दूसरे के पास चले गए, उन्होंने कहा आपकी 115 वर्ष की उम्र है। नहीं समझे, घर में ऐसी लंबी उम्र वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। शाबाश, वाह वाह, क्या वाह वाह वाह, इसमें क्या रखा बोलिए आप, घर में कोई भी आप जैसे लंबी उम्र वाला नहीं, इसका अर्थ क्या आपसे पहले सब रिटायर होंगे। मरने की बात कहो मत, लंबी चौड़ी उम्र कह दो तो वो ठीक है। रागी प्राणी राग से ही देखता है। आप अकेला अवतरे, अकेले ही जाना, अकेले ही आना, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कटु सत्य है और ये त्रैकालिक सत्य है। अनंत काल से संसारी प्राणी अकेला ही आ रहा है और अकेला ही जा रहा है। आप अपने आप को महसूस करिए, अपने यहां आचार्यों ने जीवित अवस्था में किस प्रकार की धारणा बनाने की शिक्षा दी है। आचार्य शुभचंद्र हुए हैं जो ध्यान के महान वेत्ता और ध्याता भी थे। अपने आप के ध्यान साधना के ऊपर उन्हें इतना पूर्ण विश्वास था और विश्वास के साथ वो लिखते गए हैं। धारणा बनाइए, अपने आप को पर्यायवादी छोड़ करके एक ऐसी धारणा बना दीजिए कि मैं अकेला हूं, द्रव्य के अपेक्षा से अकेला, नित्य अवस्थित और अरूपी हम हैं। नित्य इसलिए हैं कि कब मिटने वाले नहीं है कभी भी, और अवस्थित का अर्थ जो हमारा अस्तित्व है वह एक के रूप में है, दो के रूप में नहीं है। बीच में यह संबंध हुआ करते हैं। जब किसी एक व्यक्ति के साथ किसी एक दूसरे का विवाह संबंध हो जाता है तो बीच में संबंध हो जाता है। जब नारी ही छूट जाती है तो नारी छूट जाए तो बात क्या है? नारी का अर्थ दो हैं, नारी जो जीवन की आदि से चल रही थी और नारी जो है वो बीच में आकर के संबंध को प्राप्त हुई थी, वह निकल जाए उसमें क्यों रोते हो? यह भी तो चली जाती है, यह नारी भी चली जाती है और वो नारी भी चली जाती है, सब जाने वाली नारियां हैं, और भीतर जो नर है पुरुष है आत्मा है वह न जाता न आता है, वह आत्मा अकेला है। इसलिए धारणा ऐसा बनाइए, उन्होंने ये कहा है भूमिका बनाकर के धारणा बना लेना चाहिए, क्योंकि आकिंचन धर्म है। जब पूरे पूरे परिग्रह नहीं रहे हमारे पास, कल त्याग हो गया, अकेले रह गए, अब क्या धारणा बना लेना चाहिए? द्रव्य दृष्टि बना करके एक तो सर्वप्रथम पालती मार करके बैठा हुआ है, फिर बाद में उन्होंने वहां पर भीतर ध्यान लगाने के लिए कहा है, और उस नाभि से फूटती हुई अग्नि की एक लपट ऊपर की ओर बहने लग जाती है, और ऊपर एक आठ कमल, आठ पांखुड़ी वाला एक कमल है, और उन सारे सारे आठों पांखुड़ी के ऊपर ज्ञानावरण आदि आठ कर्म लिखे गए हैं, और उस लपट के साथ वह सारा का सारा जलने लगा, फिर जलता 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 पूर्ण वह जल करके नीचे गिर जाता है, और वह अग्नि और ज्यादा बढ़ करके जो ऊपर शरीर है वह शरीर को भी जला देता है। 5-10 मिनट के अंदर सब कुछ राख राख हो जाता है। ऐसी तूफान की धारणा कराई गई है, या तो उससे पहले जल की धारणा कराई गई है, खूब घुमड़ते हुए बादल, बिजली चमक रही है और वर्षा धुआंधार होने लगे, ऐसी स्थिति में वो सारा का सारा बह जाता है, तूफान के द्वारा सब कुछ उड़ जाता है। अब क्या वहां पर रह गया है? चिंतन करने वाला तो बैठा है लेकिन वह कुछ भी नहीं बचा, लोनलीनेस, खाली जमीन रह गई है। यह जो दिख रहा है आप लोगों को ठाट बाट, यह बिल्कुल राख में मिट्टी में मिलने वाला है, और नहीं मिलता ऐसा नहीं आप ही मिलाकर के आ जाते हैं इन्हीं हाथों से, उस आरती पर रख करके फिर बाद में उसके लिए दिया सलाई दिखाएंगे, और मान लीजिए वर्षा का काल है तो अग्नि यदि जल्दी नहीं सुलगती है तो घासलेट तेल का और प्रयोग करेंगे, पेट्रोलियम, और आजकल के तो ऐसी मशीन है 3000 सेंटीग्रेड एक साथ कर लेंगे तो एक मिनट भी नहीं लगता और हड्डी भी नहीं, कुछ राख राख आ जाता। फलान चंद कहां, आप अकेला अवतरे, भस्म भी 5 मिनट के लिए नहीं रह सकता। आपका क्या अस्तित्व है, किस रूप में आपका जीवन है, फिर भी आप या क्या समझते हैं मैं अकेला नहीं हूं? अरे तो वह बेचारा होगा, अकेला होगा जिसके लिए मरते दम कोई मकान तक नहीं मिला, स्टेशन पर ही वहीं कहीं मर गया, क्या अनाथ जीवन तो है ही। हाँ आप 10 खंड के मकान में, अब मतलब ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने मुझे यह सुनाया था, किसी एक सेठ को यह बहुत स्वाभिमान था, अभिमान था, उसने 12 खंड का मकान का निर्माण किया था, और कोई संत जी उनके यहां गए, उन्होंने उन्हें अतिथि समझ करके आहार इत्यादि कर दिया और अपना पूरा का पूरा बिल्डिंग उन्होंने दिखा दिया, फिर बाद में देखते 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 मुस्कान के साथ आए, फिर अंत में जब गेट आया दरवाजा, वहां पर संत जी के मुख से निकल गया, क्या निकल गया? इसी गेट से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसी गेट से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, मेन गेट से आप जाएंगे। दूसरी बात, उसको एकदम हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहीं से निकाला जाएगा। वह घर क्या है, वस्तुतः क्या है? एक केवल पर्याय बुद्धि है, अनेक ऐसे घर बने और सब खंडहर होकर के समाध भूसात हुए हैं। वह स्वर्ण की नगरी, वह अयोध्या, वह लंका, द्वारिका आदि आदि कहाँ हैं? कोई भी नहीं। कृष्ण जी का जन्म हुआ, वहां पर भी बाजे नहीं बजे, और कृष्ण जी का अवसान हुआ, वहां पर भी बाजे नहीं बजे। बीच के काल में ऐसे महान पुरुषों के जीवन में वैभव देखने में आया, लेकिन अंतिम समय में और आदिम समय में कोई पूछने वाला नहीं था। तो आप लोग किस वन की मूली है, क्या समझ रहे हो मैं अजर अमर बन जाऊंगा? दुनिया में सैकड़ों आए चले गए, सब अपनी अपनी करामत दिखा के चले गए। जब तीर्थकरों के नाम यहाँ पर शेष नहीं रहे, चक्रवर्ती यहाँ पर छह खंड के ऊपर अधिपति बने, सार्वभौम पद को प्राप्त किया और चले गए। जब चक्रवर्ती को वहां पर दिग्विजय के उपरांत विजयाद पर्वत के ऊपर अपने नामोल्लेख करना आवश्यक बना, उस समय जाकर के वह कहता है कि मेरा नाम वहां पर उल्लेख कर करके आ जाओ। मंत्री जी आकर कहते हैं कि क्या कहूं महाराज, क्या बात हो गई, रोते क्यों आए हो? इसलिए आए कि आप वहां पर चले तो बहुत अच्छा होगा। लिखो लिखो, मैं कह रहा हूं लिखो, लिखने के लिए स्थान नहीं है महाराज। कहां पर लिखूं? कागज पर लिख सकता हूं, लेकिन वो शिला पर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऐसे चक्रवर्ती कितने हुए इसकी संख्या वहां पर देखने के मिल सकती है। संभव है जो कोई भी आया उसने एक के नाम को मिटा करके लिखा होगा अपना नाम, और आपको भी यही करना पड़ेगा, लिखना चाहो तो देख लो। लेकिन मन में संतोष तो नहीं होगा, मन में संतोष नहीं इसलिए नहीं होगा कि क्या यह संसार, क्या इसका स्वभाव, चक्रवर्ती की यह स्थिति। और यदि कर्म साथ नहीं देता है तो उसी जीवन में दिग्विजय करने के उपरांत भी अपने छोटे भैया के द्वारा भी हार मंजूर करने पड़े। क्या इसको सहन करने की आप लोगों के पास क्षमता है? लेकिन यह घटना एक ही बार नहीं हुई, ऐसे अवसर्पणी हुंडावसर्पणियों के खेल कितने बार हुए हैं, उनकी भी संख्या अनंतों बार की है। अर्थात भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्तियों की हार और अपने अपने छोटे भैयाओं के द्वारा अनंतों बार हो चुका है। यह घटनाएं होती जाएगी इस धरती पर, यह नाटक चलता रहेगा। जीव और पुद्गल नाचैया में कर्म उपाधि है, यह रहस्य आपको समझना है। यह जो नाटक दिख रहा है एक केवल रहस्यपूर्ण नाटक है, खेल नहीं है। इस खेल के माध्यम से खेल का रहस्य समझना आवश्यक है। ये मंच के ऊपर आपको हंसना नहीं है किंतु देखना है। सिनेमा देखने के लिए आप मंदिर में चले जाते हो, कहां पर? चित्र मंदिर में, वहां पर नहीं, अपने जीवन का एक सिनेमा देख लीजिए आप, कि अनंत काल का पई कच कहो कही मुनि यथा। आपकी कथा कितनी लंबी चौड़ी है, तीर्थकर भगवान भी केवल ज्ञान से विभूषित होकर के उसका बखान नहीं कर सकते। इतनी लंबी चौड़ी आपका इतिहास और गाथा है और व्यथा कथा है, उसको सारे के सारे जानने के लिए, मानने के लिए, सोचने के लिए आपको केवल ज्ञान की आवश्यकता है। कथा का वर्णन संभव नहीं है। कितने बार आप उस कथा को दोहराना चाहते हो आप? केवल यह पिष्ट पेशन है, केवल यह दोहराना पुनरावृत्ति है, नई कोई वस्तु नहीं है, भोग कोई वस्तु नहीं है और विषय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे भोगे हुए उन्हीं को पुनः पुनः बच्चों को जैसे समझाने के लिए, संतुष्ट कराने के लिए ये सब कर्म के माध्यम से आप लोगों के सामने आया करते हैं। इस रहस्य को जान करके अपने आप को अकेला समझने का प्रयास करना चाहिए। ये धारणाएं संतों के द्वारा जो बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है, यद्यपि इसको वस्तु स्थिति नहीं कहते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति के रूप में समझ लेना चाहिए। ये एक ऐसा स्वप्न है, ऐसा एक नाटक है, वस्तुतः वेश नहीं है। कोई व्यक्ति एक ही नाटक में 10-20 पाठ लेकर के आ जाता है, क्या वह 10-20 व्यक्तित्व को लेकर के आता है? क्या नहीं, एकमात्र चित्र, एकमात्र वेश आभूषा, ऊपर केवल जो है एक्टिंग करता है, भीतर से वह भिन्न रूप से एक्टिव रहता है। भीतर की एक्टिविटी, भीतर की क्रिया वह वस्तु के अनुरूप चलती रहती है, बाहर केवल एक पर्याय बुद्धि में देखने में आता है। वह समुद्र की लहर, वह सरोवर की तरंग माला देखने में आती है, पकड़ने के लिए चले जाओ समाप्त हो जाती है। केवल वह हवा का झोंका और वह पानी का परिणमन, जल का परिणमन और आंखों के लिए आपको ऐसी शोभा लग जाती है, पकड़ने की चेष्टा आप करते हैं लेकिन वह तरंग हाथ में नहीं आती, वह तरंग हाथ में नहीं आती, तरंग को पकड़ने के लिए चले गए, वह जल हाथ में आ जाता है, जो त्रैकालिक सच है। उसी प्रकार जब कभी भी हमें पकड़ने की चेष्टा हमने की है, उस समय तरंग पकड़ में नहीं आए, कोई पर्याय पकड़ में नहीं आए, कोई त्रिकंड अधिपतत्व, तीर्थकरत्व, केवल तो कुछ भी नहीं आए, केवल मात्र पर्याय बुद्धि है। आपने 9वें अध्याय को पार कर चुके हैं, कल जो है मुक्ति होने वाली है, बोलियां बोल चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, आप इस प्रकार की धारणा बना करके कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ये धारणा करते चली जाइए और ये सारे सारे नाटक को भूलने का प्रयास कर लीजिए, आपका माइंड वैसे रिलेक्टिव हो जाएगा। रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, कम से कम संतुष्टि और भीतर से रुचि के साथ यदि करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपको यह बिल्कुल स्वप्नवत नाटक के समान देखने में आएगा। इसको जो व्यक्ति नाटक के रूप में भली भांति विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति नियम से एक कदम आगे तत्व के क्षेत्र में बढ़ जाता है, उसका विश्वास इतना दृढ़ होता चला जाता है कि किसी भी कोई भी राग कोई भी लोभ उसको आकर्षित नहीं कर सकते, वह लुप्त नहीं हो सकेगा, क्षुब्ध नहीं हो सकेगा, वह मुक्त नहीं हो सकेगा। एकमात्र स्तब्ध होकर के शांत दृष्टि से देखना प्रारंभ कर लेगा कि आखिर मैं कौन हूं और उस ये सारे सारे नाटक का स्रोत क्या है, आखिर केवल भावों का खेल है, जी और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, कर्मों का केवल खेल है और ये कर्म समाप्त हो जाते हैं, ये खेल सब समाप्त हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? इस खेल को आप समाप्त नहीं करना चाहते लेकिन कर्म चाहेगा तो यहाँ पर ऐसा वह रूलिंग कर देगा कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर राख राख कर सकता है, वह कर्म की देन है, वह कर्म के हाथ में है, वह नदी नाले जो कुछ भी है सब परिवर्तित हो सकते हैं, आपका यथार्थ वार सब कुछ चौपट हो सकता है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर स्वर्ग जैसा एक क्षण में यहाँ पर नरक जैसा बन सकता है। केवल कर्म उपाधि है, वह कर्म स्वभाव नहीं आत्मा का, केवल उपाधि है, विकृति है और विकृति लहर के समान मिटती जाती है और बनती जाती है, मिटती जाती है, बनती चली जाती है। जब द्रव्य का स्वभाव सामने आ जाता है, जब द्रव्य का स्वभाव सामने आ जाता है तो वह सब शांत हो जाता है। घटमौल सुवर्णार्थी नाशोत्पादित स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्तो जनो याति सहेतुकम्। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र की रचना करते हुए आपके मीमांसा करते हुए सर्वज्ञ की मीमांसा करते हुए अंत में एक साथ अध्यात्म को भीतर से बाहर की ओर बहा दिया है। इस संसारी प्राणी को यदि शांति मिल सकती है तो एकमात्र अध्यात्म ही है। आत्मी स्थिति इति अध्यात्म, अधि आत्मा के भीतर की अपेक्षा से आ जाता है, अधिकरण अर्थ में अधि है, वह आत्मा में जब आएगा तभी इसे शांति मिलेगी, बाहर बाहर यह जब भटकेगा तो वहां पर उपाधि मिलेगी इसे। परिधि के ऊपर चक्कर लगाना पड़ता है, पंखा ऊपर चल रहा है, आप देख लीजिए पंखा ऊपर चल रहा है, उसमें क्या है? घट मौल सुवर्णार्थ, तीन पर्याय है, तीन पंखुड़ियां हैं और एक डंडा है, जो डंडा है वह घूम नहीं रहा है और तीन पाखुड़ियां घूम रही हैं। उत्पाद वे द्रव ये चौथ तीनों पर्याय हैं और जो है डंडा है वह सत है, जहां पर घुमाव नहीं है वहां पर कोई मक्खी जाकर के बैठ जाती है तो शांति के साथ बैठ जाएगी और सारा का सारा दृश्य वह देखने लग जाएगी, किंतु जो ही वह पाखुड़ी के ऊपर बैठ जाएगी, वह पाखुड़ी के ऊपर बैठते ही उसको गति मिल जाएगा और वह नीचे गिर जाएगी या तो उड़ना पड़ेगा उसे, वहां पर ठहराव नहीं है वहां पर ठहराव नहीं है और जहां पर ठहराव नहीं वहां पर आप पैर टिकाना चाहते हैं यह गलत बात हो जाएगी। पर्याय के ऊपर आप टिकना चाहते हैं, आंखें फिसल जाती है, कभी वियोग कभी संयोग कभी स्थिर भाव है ही नहीं, इसलिए जो स्थिरत्व है उसके ऊपर आपकी दृष्टि होना चाहिए वह है स्वर्णत्व। किसी को कुंभ की आवश्यकता थी, कलशी की आवश्यकता थी, वह चाहता था मुझे कलश कनक की कलशी चाहिए और दूसरे को चाहिए थी मुकुट और स्वर्ण का मुकुट चाहता था और तीसरे को चाहिए तो मुझे स्वर्ण चाहिए। अब मान लीजिए मुकुट के रूप में स्वर्ण है और सुनार ने उसे घट का रूप धारण करा दिया तो घड़े जिसको चाहिए था कलश जिसको चाहिए था वह तो हंसने लगा प्रसन्न हो गया और जिसको मुकुट चाहिए था वह रोने लगा मेरा आभरण चला गया, किंतु जिसे स्वर्ण की आवश्यकता थी दोनों में ही स्वर्ण था वह न हंसा न रोया। यही अध्यात्म का खेल है। 10 दिन में आपको यही समझना था, आप बहुत कुछ समझ चुके हैं सुन चुके हैं और समझने को क्या वैसे अनुभव हम लोगों से भी ज्यादा आपको है, संसार का राग का कहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, लेकिन उससे इस ओर आने के लिए इस प्रकार के उदाहरण देख करके अध्यात्म को समझाने का प्रयास संतों ने ऐसा किया है, इसलिए आपके सामने ये चार पंक्ति हैं मैं रख रहा हूं, इनको आप कंठस्थ करके कुछ उन पंक्तियों के ऊपर अर्थ की दृष्टि से सोचने का प्रयास करिए। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है पंक्तियां बहुत सरल है और अर्थ इसके इसमें जितना आप निकालेंगे उतना ही गंभीर होता चला जाएगा और ऐसे आप खो जाएंगे, ऐसी शांति आपको मिलने लग जाएगी। किंतु पंक्ति के ऊपर बार बार अनुप्रेक्षा का कथन होना आवश्यक है कि बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? शरीर को लेकर के शरीर धारे इतने बैठे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और हा मेरा भी नहीं है। क्या इसको मंजूर करोगे आप? अब नहीं भी करेंगे तो आपके सामने आएगा। जिसको हम मेरा 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 कहते थे, आत्मा आत्मी है बुद्धि त्याग, मैं और मेरा जो कुछ कह रहे थे आपके सामने सामने ही लय को प्राप्त हो रहे हैं। जो मैं कहने वाला था वह राख में मिल जाता है और इतिहास बन जाता है, कहानी बन जाती है, और वह सारा का सारा चित्र समाप्त। प्रत्येक का यह इतिहास इसी प्रकार, प्रत्येक का भविष्य इसी रूप में रहेगा, पुनरावृत्ति कुछ भी नहीं होने वाली। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन जो भंग आया था उसमें एक आहा है, आगे होने वाले पर्याय, पीछे होने वाली पर्याय, वर्तमान की पर्याय जो कुछ भी हुई है वो इसी रूप में पहले भी थी, इस रूप में अभी भी आएगी, आगे भी इसी रूप में होगी। कोई नई पर्याय नहीं मिलने वाली है। 84 लाख ही योनियां हैं, ज्यादा नहीं। 4 ही गतियां हैं, 8 ही कर्म हैं, और सुख और दुख यही हैं, और कुछ नहीं होने वाला है। शरीर इसी प्रकार का मिलने वाला है, इसी प्रकार मिटने वाला है, इसी प्रकार का बनावट। कभी ऐसा काल नहीं आएगा जो अलग प्रकार का शरीर बन जाएगा, नहीं। यह सब कुछ है, यह त्रैकालिक है, इसी व्यवस्था में आप घिरे हुए हैं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, तुझे नहीं, ये आंखें मुझे नहीं देख सकती, मेरे पास देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे नहीं देख सकती, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। इन पंक्तियों को आप सोचिए, इन आंखों के द्वारा मैं जो मैं कहता हूं वह नहीं देखने में आ सकता। इसलिए इन आंखों से क्या मतलब है? इन आंखों से केवल बाहरी वातावरण को देखने का काम आता है। जो देख रहा है वह देखने में नहीं आता इन आंखों के द्वारा। उन आंखों से क्या मतलब है जिसके द्वारा स्वयं को वह नहीं देख सकती? ये आंखें मुझे नहीं देख सकती, मेरे पास देखने की शक्ति है, उसी का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और वह मेरा भी नहीं। ये पंक्तियां आप दोहराती चली जाइए, आपको नियम से शांति मिलेगी। लेकिन यह ध्यान रखना, इन पंक्तियों के साथ जब जैसे जैसे वस्तु स्थिति खुलने लग जाएगी, वैसे वैसे आपको नियम से एक अनुभूति अलग ढंग की होने लग जाएगी। और जिस किसी भी के प्रति राग तो फिर भी होगा आपका, लेकिन उस राग को होते समय भी ये पंक्तियां जब दोहराने लग जाएंगे, उस अटैचमेंट से आपको हटने का अपने आप ही सहज रास्ता देखने में मिलेगा। आप लोग सब कुछ करते हैं, बाहरी धर्म को बहुत कुछ अपनाते हैं, लेकिन भीतरी धर्म की ओर आपका दृष्टिपात नहीं जाता। और अध्यात्म यही कहता है कि भीतर जब तक क्रोध मान माया लोभ का त्याग नहीं होगा, तब तक यह जो कोई त्याग है, यह त्याग त्याग के रूप में नहीं आता। त्याग जा करके आगे वह राग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ने त्याग कर दिया, एक ने संकल्पित कर दिया, दोनों की दृष्टि में एक प्रकार से बहुत कुछ अंतर है, लेकिन तीसरा कोई व्यक्ति उसकी तुलना करता है, तुमने क्या कर दिया, मैंने 10 लाख का त्याग किया है, फलाने क्षेत्र पर इतना दिया, 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 बच्चों को अंत में कह करके आया है इतने क्षेत्र में और लगाने हैं, नहीं लगाते हो तो ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार अभिमान के साथ कहता तो उसने त्याग नहीं किया, वहां का त्याग यहां कर दिया, लेकिन यहां पर बिल्कुल कंप्यूटर में भरा हुआ है, यह भी एक संकलन है। और एक तो ट्रेजरी में रख रहा है, एक ने तो त्याग करके इस ट्रेजरी में रख रहा है और उसके प्रति मान का आविर्भाव और कर रहा है, यह त्याग त्याग नहीं है। किंतु उसे तो यह देखना है, त्याग तो त्यक्त है ही अनंत काल से, जब मैं ही यह नहीं हूं और यह मेरा नहीं है तो मेरा क्या है? तो मैं तो केवल देखने वाला और जाननहारा, देखनहारा, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है, ना हार है ना जीत है, कुछ भी नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्तित्व को लेकर के बैठा हूँ, अहम इक्को खल शुद्धो दंशन नान मयो सदा रूवी नवि अत्य मज किंच भी अन्नम परमान मित्तम पी। मैं अकेला एक हूँ, शुद्ध हूँ, आत्म रूप हूँ और ज्ञानवान दर्शनवान हूँ। शब्द रूप भी मैं नहीं हूँ, शरीर रूप भी मैं नहीं हूँ, मन रूप भी मैं नहीं हूँ, धन रूप भी मैं नहीं हूँ। मैं किस रूप में, मैं अकेला एक हूँ। जो कुछ भी दिख रहा है इसमें तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना जिसके घट में हमेशा भरी रहती है, ध्यान रखना उसका संसार का तट बिल्कुल निकट आ चुका है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बेशक हम कह सकते हैं और बड़े बड़े संतों का यही कहना है बंधुओं, इसलिए इस प्रकार की धारणा आप बनाती चले जाइए। जीवन में जो कुछ संघर्ष है वो सब कुछ समाप्त होती चले जाएंगे। इस भावना के साथ ही हमें वैराग्य आ सकता है, इस भावना के साथ ही हमारे भीतर की जो कर्म की लड़िया है वो सारे सारे चूर हो सकती है। संक्षेप में, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि, इन तीन बुद्धियों ने संसार के जीवों की बुद्धि को समाप्त कर रखी है। यह एक प्रकार से बुद्ध हो गया है, यूं कहना चाहिए यह बुद्ध होकर के भी बुद्ध हो गया है। इसलिए हो गया है कि वह कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ता नहीं है, वह स्वामित्व बुद्धि को छोड़ता नहीं है और वह भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ता नहीं है, क्योंकि दूसरी वस्तुओं के साथ अपना ऐसा घनिष्ठ संबंध जोड़ देता है। समझ में नहीं आता इसको, लेकिन आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। जब अनंतों बार ये घटना घट चुकी है संसारी प्राणी के साथ, फिर भी इसे इसकी आंखें नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? जब संत इस प्रकार के बार बार उपदेश सुनाएंगे तब कुछ बने उपाय, कर्म छोर आवत रुके तब कुछ बने मोह। जब उपशमे संतों की वाणियों को बार बार आप सुनती चली जाइए, बार बार विचार करती चली जाइए, ये जो घटना नित्य नियमित को घटती जा रही है इनके बारे में घोर से आप सोचिए, रोते हो धोते हो पुनः वापिस उसी में हो जाते हो लीन। लेकिन रोते समय भी ये सोचिए, मैं किसके लिए रो रहा हूँ? क्या जिसके लिए रोया जा रहा है वह वापिस आने वाला है? एक व्यक्ति आए, महाराज इस प्रकार की घटना मेरे जीवन में घट गई और मैं बीच में हूँ, अब इस प्रकार की घटना घट गई, मैं अब क्या करूँ? पूरे के पूरे जीवन में मेरे ये घटना याद रहेगी, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, मेरी स्थिति ये खराब हो रही है, मैं क्या करूँ महाराज? तुम तो समझदार हो। हाँ समझदार तो हूँ, लेकिन मझदार में हूँ महाराज। समझदार तो हूँ लेकिन मझदार में हूँ। क्या मजेदार बात कहते हो आप, मझदार में नहीं है, समझदार हो, थोड़े विचार करो महाराज। अपने ऊपर जब बीत हुई है तब कुछ भी विचार नहीं आते, सब आचार ठप हो जाते, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसके लिए रो रहे हो, वो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, किसी की एक पत्नी मर गई थी, 3 साल हो गए और उसी में उसी की बात वह कर रहा। हमने कहा जिसके लिए तुम रो रहे हो 3 साल में एक आध बार वो आई थी? एक आध बार वो आई थी, और कोई चिंता मत करो, मैं वहां पर बहुत सुख के आनंद के साथ हूँ। वह स्त्री के रूप में भी रह सकती है, पुरुष के रूप में भी रह सकती है, त्रिंच के रूप में भी हो सकती है, देव के रूप में हो सकती है, मनुष्य के रूप में हो सकती है, नारक के रूप में भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकती है, कुत्ती हो सकती है, बैल हो सकती है, गाय हो सकती है, किस रूप में हो सकती है? उसने आकर कुछ नहीं कहा। और यह संसारी प्राणी की दशा क्या मालूम है? एक समय नहीं होता वहां पर ठाट बाट जम जाता, डेरा लग जाता है और पीछे का समाप्त, फुल स्टॉप, मुड़ करके देखने का कोई सवाल नहीं। और मान लीजिए देह हो गया और अवधि ज्ञान के माध्यम से, जाति स्मरण के माध्यम से वो देख भी लिया, जान भी लिया, तो भी इस प्रकार की घटना अनंत बार हो गए हैं, ये तो चलती फिरती है। वो उसमें ऐसा लीन हो जाता है उन देव और देवियों में कि बस कुछ हुआ ही नहीं, यहां पर रो रहे हैं धो रहे हैं उसी शव को लेकर के, पीट रहे हैं छाती, पीटते पीटते रो रहे हैं, और वहां पर जाकर के वह आनंद का मोज उड़ा रहा है, अन्यत्र वह रवाना हो रहा है, पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है। आप बनाइए यहां पर पिकनिक। कितना यह अंध बुद्धित्व है। आचार्य कहते हैं यह एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि छोड़ दीजिए, यही एकमात्र अध्यात्म है और एकमात्र यही एकमात्र पुरुषार्थ है। इस छोड़ते समय विवेक की, तत्व ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है। उसकी आंखें खुल गई, महाराज 3 साल में एक बार भी नहीं, और एक इतना ही नहीं, वह तो अपने आनंद में होगी, तो तुम क्यों रो रहे हो? गलती हो गई महाराज, ये एक जीवन में इस प्रकार यदि धारणा बना लेते हैं तो ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसी पत्नी, ऐसे पुत्र, ऐसे माता, ऐसे पिता कितने बार हो गए हैं? कोई भी ऐसा जीवन नहीं जो माता पिता नहीं बने। तो दुनिया में सबके साथ इस प्रकार का संबंध हो चुका है, इसलिए कोई न भाई है न बहन है। आई एम अलोन, मैं एकमात्र अकेला हूँ। आकिंचन धर्मोहम। आज का कौन सा धर्म है भैया, क्या होना है? अकेला होना है। आज का धर्म बहुत कट महाराज, कल तो त्याग फिर भी था बढ़िया। यहाँ पर अभी बोली बोल रहे थे कि पहले जो सागर में एक बार बोली बोल दे रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छे जो बोली बोली गई थी, उसमें उस बोली का नाम रखा था हमने 1301। उसका रहस्य बहुत अच्छा खुल गया। क्या है 1300 करता 1301 ऐसा कहा, तो उसके उपरांत उन्होंने कहा 1301 1301, तो हमने कहा 1301। 1300 कुछ भी है वो एक ही है, बाकी सब साफ है। इस प्रवचन को सुन करके पंडित जी ने उसको नकल करके और निकाल भी दिया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भैया जब कभी भी आप बोली बोलो तो इस 1301 को तो कम से कम याद ही रखो। आज भी 1501 तक तो चली गई, उस बीच में 1301 तो आ ही गया था, वहीं पर रुक जाते तो हम कह देते, लेकिन याद दिला दिया 1301। तुम्हारे पास कितना है? मैं अकेला, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। इस संसार में किसी का कोई भी साथी नहीं है, संगाती नहीं है, अकेला आता है अकेला जाता है। ये 343 राजू प्रमाण इन तीन लोक में ये भटकने वाला, इसको कोई रास्ता बताता नहीं, अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे ऐसे कर्मों को बांध लेता है और वह एक सेकंड में सब पार कर जाता है। बंधुओं 14 राजू उत्तंग नभ जो है, नीचे से लेकर के ऊपर तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक जब कभी भी रुजुगति से जाना होता है सीधा चला जाता है, कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार का कार्यक्रम इस संसारी प्राणी का अनंतों काल से चल रहा है। बंधुओं इस रहस्य को सोच लो और समझ लो कि यह जो ऊपर पर्याय दिख रही है यह हमारी नहीं और यह सो हम नहीं है, इसके लिए इतने परिश्रम क्यों कर रहे हो? इस रहस्य को जान लो और समझ लो और तत्व दृष्टि के माध्यम से, विवेक दृष्टि के माध्यम से जीवन को चलाओ। आनंद के बिना और कुछ आएगा नहीं आपके पास। दुख भी संवेदन में आ जाता है तो उस समय भी यही अनुभूति होगी, यह दुख असाता वेदनी का फल है, सो मैं नहीं हूँ, मेरे पास न दुख है न सुख है, मैं तो एकमात्र ज्ञान घन हूँ और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह तत्व चिंतन की महिमा है। बंधु जो मर रहा है, शरीर बिल्कुल रोग से घिरा हुआ है और लार बह रही है, नाड़ हिल रही है, कमर टूट रही है, सब कुछ हो रही है, फिर भी एक ओ हम शाश्वतो आधा कह रहे हैं, कभी आह मुंह से नहीं निकलती, क्यों? किस भरोसे पर, किस विश्वास पर, कौन सा ऐसा आधार है जिसके माध्यम से यह वृत्ति उसके जीवन में आ गई? आचार्य कहते हैं यही तात्विक दृष्टि मानी जाती है, यह भीतरी दृष्टि मानी जाती है, अध्यात्म इसी को बोलते हैं। इस अध्यात्म को छोड़ करके आप लोग कहां पर भटक रहे हैं? आपकी वृत्ति को देख करके करुणा आ जाते, कहें सीख गुरु करुणा, करुणा के साथ हमें कह देते हैं कि बंधुओं अपने दृष्टि को 5 मिनट के लिए तो कम से कम फेर दीजिए, यहां पर जो कुछ भी हो रहा हुआ कर्म का फल है, अज्ञान का फल है, आत्मा के स्वभाव का फल तो कुछ और ही है। जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त कर लिया और जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त करने के एक साधना को अपना लिया है और जिन्होंने स्वभाव के ऊपर विश्वास कर लिया है, उन व्यक्तियों के सहमास में चले जाओ। सम्मतस्य निमित्तं जिन सुतम तस्नाया जीवा अंदर हे दो भनिदा दंसन मोहिनी सखय पौड़ी। कुंद भगवान ने नीम सार में यह भीतर घुसने का एक उपक्रम बताया है। ये बाहरी वर्णन मत सुनिए, आप भीतरी वर्णन सुनिए, भीतर आत्मा का खेल किस प्रकार चल रहा है और कर्म किस प्रकार उस आत्मा को सुख दुख पहुंचा रहा है और यह पहुंचाने का क्रम कब तक चलेगा, क्यों, इसमें क्या माध्यम है, सब बता दिया है। उन्होंने कहा जिनेन्द्र भगवान के जो सूत्र है, जिनवाणी है, वह सूत्र ही हमारे लिए उस दृष्टि को प्रदान करने में सक्षम है। दूसरा कारण क्या है, एकदम हम उठा करके देखने लग जाए, पढ़ने लग जाए तो वह दृष्टि नहीं मिल सकती। गुरु बिना ज्ञान नहीं और भेद बिना चोरी नहीं, ये कहावत आपको याद है। ये तो गुरु के पास आप चली जाइए और पूछिए इसका क्या अर्थ है। तस नाइया पुरुषा, ग्रंथ को जानने वाले, श्रुत को जानने वाले जो पुरुष हैं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्र है, वीतरागी है, रत्नत्रय मार्ग को अपना रहे हैं और तिलतुस्मात परिग्रह नहीं रखते, उनके पास जाकर के आप पूछिए मत, बैठिए अपने आप ही ये ज्ञान होने लग जाएगा, इसके अलावा और कहीं अन्यत्र शांति नहीं है, ऐसा समझ में आ जाएगा। तस नाइया पुरुषा, इसके माध्यम से भीतर में क्या होता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए पूर्व दर्शन मोहिनी का क्षय क्षयोपशम उपशम होना अनिवार्य हो जाता है।
और शांति के साथ हम इन पंक्तियों को सोचते चले जाएं, तो अपने आप ही भीतर बैठा हुआ वह कषाय और वह दर्शन मोहिनी, मोहिनी का आटा मिश्रित परिवार जो है 28 प्रकृतियों का, वह सब छिन्न भिन्न इसी एकमात्र ध्यान के माध्यम से, ज्ञान चिंतन माध्यम से, इस तर्कना के माध्यम से ही वह छिन्न भिन्न हो सकता। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है हम दर्शन मोहिनी को या चारित्र मोहिनी को समाप्त कर दे और अपने अस्तित्व को प्रकट कर दे, संभव नहीं है। कोई भी एक रसायन है तो वह राग रूपी रसायन के माध्यम से कर्म का बंध होता है, वीत राग भाव या ज्ञान के चिंतन भावों के माध्यम से ये सारे के सारे विघटित हो जाते हैं। स्नेह के माध्यम से बंध हुआ था और स्नेह का अभाव हो गया, सारा सारा खेल समाप्त हो जाता। संसार का खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हम राग और द्वेष नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम अकेलेत्व का, एकत्व का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी चाहो, सुखम इच्छति न सुखम, इच्छा मात्र से सुख की प्राप्ति होगी। दुखा विवेति, मैं दुख से डरता हूँ, इसके माध्यम से दुख की क्षति या अभाव तीन काल में संभव नहीं है। विवेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभो, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादि। स्वामी समंत भद्र ने एक स्थान पर सुभाषनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, देखो यह संसारी प्राणी कितना मूर्ख है, वह मृत्यु से हमेशा डरता रहता है, अपने आप को अकेला नहीं समझ रहा है, इसलिए मृत्यु से डरता है। लेकिन मृत्यु से डरने मात्र से मृत्यु कभी भी छूटती नहीं, मन की हारे हार है, जब तक जो हारते चले जाओ, डरते चले जाओ, वैसे वैसे वह मृत्यु आपके सामने नाचती जाएगी और आपको डर दिखाएगी। नित्यम शिवम वांछति, सुख की कल्याण की वांछा हमेशा संसारी प्राणी रखता है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुख को नहीं चाहता हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं। लेकिन कितना पागल बना हुआ है, सुख की इच्छा तो मात्र करता है और दुख से डरता है, लेकिन अज्ञानी, उसे ज्ञात नहीं है कि दुख का अभाव कैसा हो सकता है और सुख का सद्भाव कैसा हो सकता है। ज्ञान नहीं होने के कारण संसारी प्राणी अज्ञानी रहा है, उसको हे भगवान सुभाषनाथ भगवान आपने समझाया और कुछ लोगों को समझ में आ गया और हमारे जैसे अभी भी समझ में नहीं आया, इसलिए तो यहीं पर बैठे हैं बंधु। जब तक हमें मुक्ति नहीं होगी तब तक तो यही कहना पड़ेगा हमारे भीतर कुछ न कुछ कमी है, और वह कमी में क्या है और कुछ नहीं है, शरीर के प्रति हमारा किसी भी रूप में राग बना हुआ है अथवा भिन्न पदार्थों के प्रति हमारे लगाव अभी ज्यों के त्यों बनी हुई है, इसी कारण नहीं तो अंतर मुहूर्त के अंदर वह मुक्ति हमारे सामने नाचती हुई आती है। कौन पकड़ सकता है उसे, कोई भी नहीं पकड़ सकता, यही एकमात्र शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरण, हे आकिंचन धर्म, मेरे लिए तुम ही शरण हो और कोई भी शरण नहीं। जिस किसी भी शरण में मैं गया आज तक, मिले सरागी, हाँ कि किसी भी प्रकार से ढूंढते ढूंढते चले गए, क्योंकि हमारे भीतर सरागता घुसी हुई है, सामने वही राग देखने में आया। यदि वीतरागता की खोज करते तो सरागी थोड़े मिलते, वीतरागी भी मिलते हैं, लेकिन वीतरागता की खोज की नहीं हमने, ऐसा कभी भी समय नहीं है जो वीतरागता के यहाँ पर प्रतितल पर अभाव हो गया हो। तीर्थ तो हमेशा चल रहा है, सिद्ध परमेश्वर हमेशा बनते जा रहे हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीवों की मुक्ति यहाँ पर नियमित रूप से हुआ करती है, इतने ट्रांसफर हो ही जाते हैं, कभी रुकना चाहिए। यदि रुक भी जाए 6 महीने के लिए तो 8 समय में 608 यूं चले जाएंगे, यह तो बनी हुई है। हमने ही अपनी दृष्टि में राग को ही उपास्य माना और यहाँ कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, इससे कुछ पाऊंगा, इससे कुछ पाऊंगा, कुछ पाया नहीं आया। मिले आज वीत रागी देव, भेटे हो अब नहीं समझे, मेटे राग कुटे, वो नहीं मेटने वाले, वो तो राग मेटे हुए है, हमें उनके माध्यम से अपने राग को मेटना है। उनके सामने जाने मात्र से जो है नहीं मिट सकता राग, इच्छा मात्र से जो है मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुआ करती और वह मृत्यु का अभाव नहीं हो सकता। बंधुओं आपका समय हो गया है, आप जागृत हो जाइए, आप अकेले हैं आज, कम से कम आज तो अकेले पने का अनुभव करो और किसी भी बंधन में नहीं, हम तो मुक्त हैं, हमारा स्वभाव शुद्धत्व है, हमारा स्वभाव ज्ञानत्व है, दर्शनत्व, हमारी संतान हम ही हैं, हमारे पिता हम ही हैं, हमारी माँ हम ही हैं, हमारे पुत्र हम ही हैं, क्या है हम हैं, जो कुछ है हम हैं, हम इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे करते चले जाएंगे अपने आप ही आप स्वस्थ हो जाएंगे और एक दिन वह समय आएगा बिल्कुल यह ऊपर का नाटक वस्तुतः मिट जाएगा, अनंत काल के लिए मिट जाएगा और वह आनंद स्वस्थ होकर के अनुभव करता जाएगा महावीर।